नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम डॉक्टर लुका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बेहद खुशी है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको काफी लाभ मिल रहा है। इसमें हम विभिन्न बीमारियों के विषय में विस्तृत जानकारी दिया करते हैं और साथ ही इसके उपचार और निवारण के बारे में भी बताया जाता है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में हमने कैंसर के विषय में बातचीत की। आज हम देखेंगे कैंसर का उपचार किस प्रकार किया जाता है। आइए देखें डॉक्टर लुका इस विषय में क्या कहते हैं।
मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैंसर एक ऐसा रोग है जो भय उत्पन्न करता है। इसका मुख्य कारण है कि कैंसर का उपचार बहुत कम है। ऐसा क्यों है? पहली बात तो यह है कि कैंसर आकस्मिक होता है और जब तक इसका पता चले यह बहुत बढ़ गया होता है। दूसरी बात, कैंसर लगभग शरीर के सभी अंगों में होता है। यदि कैंसर एक ही अंग में हो तो इसका उपचार आसान होगा। उदाहरण, यदि कैंसर केवल फेफड़ों में हो तो डॉक्टर और वैज्ञानिक यथासंभव प्रयास करके उसका उपचार कर सकते हैं, परंतु आयुर्विज्ञान को संपूर्ण शरीर पर ध्यान देना होता है। मित्रों, शरीर के सब अंग जैसे फेफड़े, अंतड़ियां, हड्डियां, यकृत, गुर्दे, मस्तिष्क और अन्य अंग, सब में कैंसर हो सकता है। यही नहीं, शरीर के प्रत्येक अंग में अलग कैंसर होता है और प्रत्येक कैंसर प्रकार का उपचार अलग होता है, क्योंकि उनकी प्रकृति भिन्न होती है। इसलिए कैंसर को समझना और उसका उपचार करना बहुत कठिन है, परंतु पिछले दशकों में कैंसर का उपचार संभव हुआ है। इसमें हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है कि भविष्य में आयुर्विज्ञान कैंसर के उपचार में महान प्रगति करेगा। मित्रों, मैं एक स्त्री की आपको घटना बताता हूँ। उसका नाम सुषमा है। उसकी उम्र 43 वर्ष की हो गई थी और उसकी पुत्री 16 वर्ष की थी। वह एक महानगर में लेखाकार थी। उसे अपनी समझ में कोई समस्या नहीं थी और वह स्वस्थ थी। वह सप्ताह में 2 बार तैरने भी जाती थी, जिससे उसका शरीर चुस्त रहता था। एक दिन तैरने के बाद जब वो शरीर से पानी पोंछ रही थी कि उसने देखा कि उसकी छाती में गिठान दिखी। उसे चिंता हुई क्योंकि उसने टीवी पर छाती के कैंसर की परिचर्चा सुनी थी। उन्होंने बताया था कि छाती में दर्द ना देने वाली गिठानों के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मित्रों, सुषमा तुरंत अस्पताल गई। डॉक्टर ने परीक्षण किया और उसको देखा कि उसकी छाती में वास्तव में गिठान है। मित्रों, उसने विशेष एक्सरे करवाया जिससे कैंसर का पता लगता है। इसके बाद वह डॉक्टर के पास गई कि एक्सरे की रिपोर्ट के बारे में पता लगाए। मित्रों, सुषमा कैंसर की शंका से भयभीत थी, इसलिए उसने अपने पति को भी साथ चलने को कहा और उसका पति भी चिंतित था। डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे से कैंसर की संभावना प्रकट होती है। मित्रों, उसका शक सही निकला, परंतु डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे से हम अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं, यह एक संभावना मात्र है। उसे एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा वहां का कुछ भाग विशेषज्ञों को भेजना होगा। एक्सरे ने कुछ स्त्रियों का विशेष कैंसर संभावना व्यक्त की थी, परंतु वास्तव में उन्हें कैंसर नहीं था। अगले सप्ताह सुषमा का छोटा ऑपरेशन किया गया। उसे कोई समस्या नहीं हुई। इस परीक्षण से कैंसर की पुष्टि हुई। डॉक्टर ने सुषमा को बताया कि कैंसर स्थानीय है और फैला नहीं है, इसलिए उसे ऑपरेशन करके उसका वह भाग निकालना होगा जिससे कि कैंसर अन्य स्थानों में ना फैले। मित्रों, वह तैयार हो गई और अगले सप्ताह उसका ऑपरेशन किया गया। अस्पताल में सुषमा की भेंट अनेक स्त्रियों से हुई जिन्हें छाती का कैंसर था, परंतु कुछ सुषमा के समान सौभाग्यशाली नहीं थी। उन्हें ऑपरेशन के साथ रे चिकित्सा और रासायनिक चिकित्सा भी करानी पड़ेगी। कुछ स्त्रियां रे चिकित्सा और रासायनिक चिकित्सा के कारण अत्यधिक क्लांत हो चुकी थीं। मित्रों, अनेक मनुष्य कैंसर के कारण निराश हो जाते हैं। वे शारीरिक और मानसिक कष्टों के मध्य आशा और जीवन का उद्देश्य कैसे साध सकते हैं? बाइबल में एक पुस्तक है जिसे पतरस ने सन 70 में कष्ट उठाने वालों के लिए लिखा था। मित्रों, इस पुस्तक में पतरस कहता है कि हमारे पास आशा का आधार है। पहला पतरस 1 अध्याय 3-4 और 6 में इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। मित्रों, यीशु के क्रूस पर मरने और मृतकों में से जी उठने के कारण हमें जीवित आशा प्राप्त है। जो कभी नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता और खराब नहीं होता है। हम आनंद मना सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें ऐसी महान आशा दी है। मित्रों, हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं तो वह केवल कुछ ही समय के लिए है। क्या ये सुषमा जैसी परिस्थिति नहीं है? वह कैंसर और मानसिक एवं शारीरिक आघातों में निर्वाह कर रही थी। हम सब कष्टों में आशा की किरण देखना चाहते हैं। हमें यह आशा कहाँ से प्राप्त होगी? हम इस आशा के बारे में कैसे जानेंगे कि कष्टों में हमें आशा की किरण दिखाई दे? हमें आशा प्राप्त होती है जब हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। अब कोई कहे, मैं ना तो प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ और ना ही इस विचार में कि वह मेरे लिए मरा। या कुछ लोग ना तो प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर अपने और ना ही जगत के पापों के लिए मरने को स्वीकार करते हैं। मित्रों, बाइबल कुरिन्थियों नामक पुस्तक में कहती है, जो सन 65 में तुर्किस्तान के मसीही जनों को लिखा पत्र है, वहां पे इस प्रकार लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। मित्रों, यह हमें पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 17 से 19 में मिलता है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मित्रों, यदि हम विश्वास ना करें कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो हम अभागे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ही की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो मृत्यु पर परमेश्वर का जयवंत सामर्थ्य प्रकट करती हैं। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु को मृतकों में से जी नहीं उठाता तो वह कैसे जीवित होता? निश्चय ही उसके अपने सामर्थ्य से वह जीवित नहीं हुआ था और ना ही किसी मनुष्य या प्रेत आत्मा के द्वारा। केवल सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर में इसका सामर्थ्य था। प्रभु यीशु का ये मृत्यु पर से पुनरुत्थान हमें आशा बंधाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई घटना प्रकट नहीं करती कि परमेश्वर को मृत्यु पर परम अधिकार है और हमारे जीवन पर मृत्यु के प्रभाव पर परम अधिकार प्राप्त है। यही कारण है मित्रों कि हम परमेश्वर के काम के लिए उसकी स्तुति कर सकते हैं, और यही कारण है कि सुषमा जैसे अनेक लोग जो कष्टों में हैं और जीवन की विषम परिस्थितियों में हैं, आशा बांध सकते हैं। प्रिय मित्रों, इससे पूर्व कि हम प्रभु यीशु के मृत्यु में से जी उठने और कैंसर रोगियों को दी गई आशा के विषय में चर्चा करें, हम कैंसर के उपचार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। सुषमा जैसे रोगियों के पास कैंसर उपचार संबंधित अनेक प्रश्न होते हैं। कैंसर के बारे में पहला और सर्वाधिक और जरूरी कार्य है कि सही और उचित निदान किया जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें कैंसर है, परंतु परीक्षणों के बाद पता चलता है कि उन्हें कैंसर है ही नहीं। उनका भय निराधार होता है। कुछ लोगों को कैंसर होता है परंतु उत्तक परीक्षण से ज्ञात होता है कि उनका कैंसर अपेक्षाकृत उग्र नहीं है। कुछ लोग डरते हैं कि कैंसर के कारण अब वे शीघ्र ही मर जाएंगे। निसंदेह कुछ रोगियों के साथ ऐसा होता है, परंतु अधिकांश के साथ नहीं। इसलिए मित्रों, कैंसर उपचार का प्रमुख और महत्वपूर्ण चरण है उचित निदान। दूसरा, निदान से बंधित प्रक्रिया। उत्तक परीक्षण स्थानीय लघु शल्क द्वारा रोगग्रस्त भाग के कुछ उत्तक निकालकर परीक्षण के लिए भेजना होता है, परंतु कभी कभी बड़ा ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत ही कम अवसर आते हैं। इस लघु शल्क से बहुत ही कम समस्या उत्पन्न होती है। सच तो यह है कि इस ऑपरेशन के तुरंत बाद उसी दिन रोगी घर जा सकता है। तीसरा, बड़े ऑपरेशन का निर्णय लेना। आवश्यक नहीं कि निदान के बाद एवं कैंसर का ऑपरेशन आवश्यक हो। उदाहरण के तौर पर रक्त कैंसर में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अंतड़ियों के कैंसर में बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता होती है कि अंतड़ी का प्रभावित भाग अलग किया जाए और रोग का संक्रमण भी देखा जाए। कैंसर के विकार की सीमा को जानना कैंसर उपचार का एक महत्वपूर्ण चरण है। मित्रों, इसलिए एक अति अनुभवी डॉक्टर को यह ऑपरेशन करना चाहिए। यदि ऑपरेशन द्वारा कैंसर का मुख्य भाग हटा दिया गया है और डॉक्टर कैंसर का विस्तार जानना चाहता है तो विशेष एक्सरे की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? यह इसलिए किया जाता है कि कहीं कैंसर शरीर के अन्य भागों में फैला तो नहीं गया। उदाहरण के तौर पर फेफड़े, यकृत, हड्डियां और सिर में प्रायः कैंसर फैल जाता है। इस विशेष एक्सरे को सीटी स्कैन, कैट स्कैन या एमआरआई स्कैन कहते हैं। ये एक्सरे अधिकांश नगरों में पाए जाते हैं, परंतु महंगे बहुत हैं। शरीर में कैंसर के विस्तार को जानने की आवश्यकता क्यों है? मित्रों, इससे डॉक्टर अन्य उपचार का निर्णय ले सकता है, जैसे रे चिकित्सा या रासायनिक चिकित्सा आदि। आइए हम अब इसकी चर्चा करें। अधिकांश रोगियों को रे चिकित्सा और स्थानीय चिकित्सा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसके बाद वे स्वस्थ प्रतीत नहीं करते हैं। रासायनिक चिकित्सा की दवाइयाँ बहुत प्रभावशाली होती हैं और उनका शरीर पर बुरा असर भी होता है, परंतु वर्षों के उपयोग से डॉक्टरों ने सीख लिया है कि इन दवाओं के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए और उन्हें काम में कैसे कम दुष्प्रभाव के साथ सुरक्षित किया जाए। इसके अतिरिक्त नई नई दवाइयों की भी खोज की जा रही है। अब कुछ रोगियों को रे चिकित्सा रासायनिक चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा रहा है। यह विकास पिछले 20 वर्षों में ही हुआ है। आशा की जाती है कि अगले दशकों में जीन संबंधी विकास के कारण कैंसर के उपचार में बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। रसायन चिकित्सा अधिकांश रोगियों को अनेक महीनों, प्रति सप्ताह, अनेक बार लेनी होती है, लगभग 2 से 6 महीने में, प्रायः इससे अधिक नहीं। इसके बाद डॉक्टर एक्सरे और रक्त परीक्षण करके देखता है कि कैंसर का उन्मूलन हुआ है या नहीं। यह भी प्रायः संभव है कि उपचार के आरंभ में डॉक्टर रे चिकित्सा की सलाह दे। यद्यपि रे उपचार रासायनिक उपचार से भिन्न है, समय उसमें भी 2 से 6 महीने का ही लगता है या अधिक कम समय। रासायनिक चिकित्सा और रे चिकित्सा दोनों ही में बालों का झड़ना और त्वचा का निकलना, उल्टी, दस्त लगना आदि आम बात है। थकान और अन्य लक्षण भी प्रकट होते हैं, तथापि इसके लिए दवाइयाँ हैं। मित्रों, क्या सबको कैंसर से चंगाई प्राप्त होती है? मैं आपको बता दूँ, नहीं। बहुत से रोगी शीघ्र मर जाते हैं और बहुत से रोगी वर्षों कष्ट उठाने के बाद मरते हैं। यही तो प्रभु यीशु का मृत्यु पर से जी उठना आशा बंधाता है। बाइबल में रोम के मसीही जनों को सन 63 में लिखी गई पुस्तक व्यक्त करती है, जो कि रोमियो उसके 8वें अध्याय और 37 से 39 में इस प्रकार लिखा है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएँ, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आशा की कैसी महान अभिव्यक्ति है मित्रों! ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें मसीह यीशु में परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। यह एक महान और शांतिदायक बात है। यूहन्ना उसके 14 अध्याय और 1 से 4 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। मित्रों, यीशु स्वर्ग में हमारे लिए स्थान तैयार कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि आप प्रभु यीशु को कैसे जानें कि अनंत जीवन पाएं। मित्रों, बाइबल उसकी रोमियों की पुस्तक 10वें अध्याय और 9 में कहती है कि मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करो और मन में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है तो तुम उद्धार पाओगे। यदि मैं विश्वास करूं कि प्रभु यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, चाहे मुझे कैंसर ही क्यों ना हो, और स्वीकार करूं कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और मृतकों में से जी उठा, तो उद्धार अवश्य पाऊंगा। कैंसर रोगियों और स्वस्थ मनुष्यों दोनों के लिए ही कैसी महान प्रतिज्ञा है। आप सबको प्रभु आशीष दे।
प्रिय श्रोता, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ मिला होगा। यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। आप हमसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0995882041। याद रहे 0995882014। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।